نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. موت ایک اٹل حقیقت ہے. ہمارا آج کا یہ موضوع ایمان بالغیب سیریز کا ایک حصہ ہے، اور الحمدللہ آج کے اس موضوع سے ہمارا اس میں ایمان بالآخرہ شروع ہو رہا ہے. من مات فقد قامت قیامتہ. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جو مر گیا اس کی قیامت شروع ہو گئی. ہم میں سے اکثر لوگ کہتے ہیں ابھی قیامت کب آنی ہے، ابھی تو بہت سی نشانیاں باقی ہیں، چھوٹی بھی بڑی بھی، پتہ نہیں ابھی تو بہت وقت ہے، یہ کر لیجئے وہ کر لیجئے. تو وہ دنیا کی قیامت تو جب بھی آئی سو آئی، میری آپ کی قیامت کا نہیں پتہ کہ یہ کب آ جائے. آج کی رات اس بستر پہ سوئیں اور آنکھ قبر میں کھلے تو کیسا لگے گا؟ کیا ہم ریڈی ہیں اس پہ کہ اگر آج میں اپنے بستر پہ سوؤں اور اگلی دنیا میں میری آنکھ کھلے؟ اس کو مجھے سوچنا بھی ہے، اس کے بارے میں غور و فکر بھی کرنا ہے، غور و فکر کرتے ہوئے عمل بھی کرنا ہے. تو موت کیا ہے؟ یہ ایک اٹل حقیقت ہے. دنیا میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کے آنے کا خطرہ ہوتا ہے، پھر لوگ اس سے بچنے کا کوئی راستہ ڈھونڈ لیتے ہیں. مثلا سیلاب آ رہا تھا، تو بات یہ ہے کہ کبھی کبھی سیلاب آ رہا ہوتا ہے، اس کا رخ موڑ دیا جاتا ہے. طوفان آ رہا ہوتا ہے، ایک دم مڑ جاتا ہے. ناروے میں اکثر خبر ہوتی ہے کہ برف آ رہی ہے، نہیں آتی، لیکن موت آ کے رہے گی. اور اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے. جس کو بھی زندگی ملی اسے موت سے دو چار ہونا پڑے گا. یہ ایک پیئر ہے، جو آج زندہ ہے کل اس کو مرنا ہے. اگر نہ یقین آئے تو چلیے میرے ساتھ قرآن پاک کی چند آیتوں کے نمبر نوٹ کیجیے. سورۃ آل عمران 185. کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. ہر جان موت کو چکھنے والی ہے، اور قیامت کے دن تم اپنے بدلے پورے پورے دیے جاؤ گے. تھوڑے نہیں، آدھے نہیں، پونے نہیں، پورے پورے. سوچئے، میری جان موت کو چکھنے والی ہے، اور مجھے میری ساری زندگی کی اچھی چیزوں کا اور بری چیزوں کا بدلہ دیا جائے گا. جی، تو اپنے آپ کو پہلا پیغام آج یہ دیجیے کہ نہ جانے یہ ٹیسٹ کس دن چکھ لوں. دوسری آیت قرآن پاک کی الانبیاء 35. کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ وإلینا ترجعون. ہر جان موت کو چکھنے والی ہے، اور ہم امتحان کے طور پر تم میں سے ہر ایک کو برائی اور بھلائی میں مبتلا کرتے ہیں، اور تم کو مرنے کے بعد ہمارے ہی پاس آنا ہے. ہمارے اردو زبان کے ایک محاورے میں کہتے ہیں، بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، 100 دن چور کے، 1 دن شاہ کا. کہاں تک بھاگو گے؟ ایک دن تم اپنے رب کے سامنے پیش کیے جاؤ گے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ انسان کی مثال اس لومڑی کی طرح جس نے زمین کا کوئی قرض دینا ہو اور وہ اس کے تقاضوں سے بچنے کے لیے بھاگنا شروع کر دے، اور بھاگتے بھاگتے ہانپتے ہانپتے ایک دن گرے اور اسی زمین کی گود میں دفن ہو جائے. سوچنے کی بات ہے کہ کیا ایک انسان مرنے کے لیے خود کو تیار سمجھتا ہے؟ آپ اور میں کسی کا کوئی قرض دینا ہو اسے بھاگیں، ہو سکتا ہے وہ نہ لے سکے، ختم. کئی لوگ کریڈٹ کارڈز یوز کرتے ہیں اور اس کے بعد بیڈ کریڈٹ ہو جاتے ہیں، کارڈز ہی پھاڑ دیتے ہیں، فون نمبر چینج کر لیتے ہیں، ملک چینج کر لیتے ہیں. لیکن میں اور آپ اس زندگی میں ایک امتحان دے رہے ہیں. یہ پوری دنیا ایک بہت بڑا کمرہ امتحان ہے، اور جہاں لفظ امتحان اور ایگزامینیشن فال آتا ہے نا، تو وہاں وقت کی کمی کا احساس ہوتا ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے. عام طور پہ 3 گھنٹے دیے جاتے ہیں، آخر پہ جان پہ بنی ہوتی ہے. یہی ہماری زندگی ہے، بچپن، جوانی، بڑھاپا، 3 گھنٹے. सिलेबस पढ़ के आते हैं, सिलेबस कुरान और सुन्नत है, एग्जामिनर अल्लाह की ज़ात है, जिसको इंसान के एक एक किए धरे का यकीन है, कोई उसकी निगाहों से छुप नहीं सकता, बच नहीं सकता। और दुनिया में अगर किसी को जीना होता और मौत से मफर होता तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को होता। हालांकि अल्लाह ताला उनके बारे में सूरत ज़ुमर की आयत 30 में फरमा रहे हैं, इन्नक मैयितुन व इन्नहुम मैयितुन, ऐ पैगंबर यकीनन खुद आपको भी मौत आएगी और ये सब भी मरने वाले हैं। आज हमारा कोई प्यारा दुनिया से जाता है, हम कहते हैं हाँ इनकी बड़ी ज़रूरत थी, क्या अल्लाह के नबी की ज़रूरत नहीं थी? हाय फलां बच्चों का बाप, तो क्या अल्लाह के नबी बच्चों के बाप नहीं थे? सोचने की बात है। एक एक चीज़ को एक इंसान सामने रखे तो उसको इस चीज़ का यकीन आ जाए कि एक इंसान कहाँ है। तो लिहाजा मौत से किसी को मफर नहीं। चौथी आयत ले लीजिए, सूरत जुमा आयत 8, कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफिर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाकीकुम सुम्मा तुरद्दून इला आलमिल गैबी वश्शहादा फ़युनब्बियुकुम बिमा कुंतुम तामलून। ए नबी, आप कह दीजिए बेशक ये मौत जिससे तुम भागने की कोशिश कर रहे हो, हर सूरत तुम्हें पहुंच कर रहेगी, फिर तुम हर जाहिर और बातिन का इल्म रखने वाले अल्लाह के हजूर पेश किए जाओगे और वो तुम्हें तुम्हारे किए हुए तमाम कामों से बाखबर कर देगा। दवाइयाँ खा लो, इंश्योरेंस करा लो, हेल्थ कॉन्शियस हो जाओ, एक्लोगस खाने खाओ। नॉर्वे में एक्लोगस कहते हैं ऑर्गेनिक को, हेल्दी, फ्रेंच में कहते बियो, नथिंग एडेड, कुछ नहीं डाला, प्योर खाना खाओ, तो क्या वो नहीं मरते? हमारे मुल्कों में लोग कहते हैं ये पोल्यूशन से मर रहे हैं, स्मोक से मर रहे हैं, और ये मुसलमानों को बीमारियां क्यों लगी? क्योंकि यहाँ गंदगी है। तो जिन मुल्कों में सड़क पर रख कर आप खाना खा लें, इतनी सफाई है और इतना वो छान फीक करते हैं, क्या वहाँ लोग नहीं मरते? हर एक को मौत आनी है। आज सिर्फ अपने बारे में सोचिए, किसी गए हुए को भी याद ना कीजिए, अपने आप को जाने से तैयार रखिए। सूरत निसा आयत 78 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, पांचवा रेफरेंस दे रही हूँ, अइनमा तकूनू युद्रिककुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजे मुशय्यदा, तुम जहाँ कहीं भी हो मौत तुम्हें आ पकड़ेगी, ख्वा तुम मजबूत किलों ही में क्यों ना हो, हर जगह आना। अब एक सवाल है कि अल्लाह ने जिंदगी बनाई क्यों? लिखिए, जिंदगी और मौत ये कोई हादसा नहीं है, ये अनएक्सपेक्टेड नहीं हो रहा। जैसे गाड़ी में बंदा मरने के लिए या हादसे के लिए नहीं बैठता, किसी दूसरी जगह जाने के लिए बैठता है, लेकिन हादसा होता है, गाड़ी टो हो जाती है। जो लोग ये सोचते हैं ना कि ये कायनात खुद ब खुद बन गई, ये को इंसिडेंसेस हैं, फिर ये हुआ फिर वो हुआ और बस मरेंगे, मर के खप के ख़त्म, बाबर बैश कोश के जहाँ दोबारा नीस, वो गलत कहते हैं। इस सब कुछ एक मकसद के साथ है। इस्लाम ने आपको मुझे ज़िंदगी का मकसद बता दिया, अफ हसिब तो मन्नमा खलकनाकुम अबसा वा अन्नकुम इलैना ला तुरजौन, क्या तुमने ये गुमान किया है कि तुम ऐसे ही अबस पैदा किए गए हो? माजरत के साथ में अगर आप सबसे पूछूं, आज आप यहाँ क्यों आए हैं? क्या आपके यहाँ आने का कोई मकसद है ना? यहाँ तो बड़ी एफर्ट से आप आए होंगे, आप दिन में 10 दफ़ा फ्रिज का दरवाज़ा भी खोलते हैं ना तो बेमकसद नहीं खोलते, 3-4 दफ़ा वॉशरूम में भी जाते हैं ना तो बेमकसद नहीं जाते। तो इतनी बड़ी दुनिया, क्या ये कोई खेल खिलौना है? ये कोई राम की लीला है? नहीं, अल्लाह ने इस दुनिया में इंसान को क्यों भेजा? हर रात आपको सोते वक्त ये सबक याद दिलाया जाता है सूरत मुल्क की आयत नंबर 1 में, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, जिस अल्लाह ने मौत और ज़िंदगी को इसलिए पैदा किया कि तुम्हें आजमाए कि तुम में से अच्छे काम कौन करता है। जी, अच्छे काम कौन करता है? बुरे नहीं कहा। एक बच्चा इम्तिहान में बैठता है, फेल होने के लिए जाता है, पास होके अगले दर्जे में जाना चाहता है। अल्लाह ने यहाँ पॉजिटिविटी इस्तेमाल की कि तुम्हारी ज़िंदगी और मौत का ये खेल इसलिए नहीं है कि तुम फेल होके जहन्नुम में चले जाओ। अल्लाह ने तुम्हें जहन्नुम का ईंधन बनने के लिए नहीं पैदा किया, अल्लाह तो तुम्हें फर्स्ट करवाना चाहता है। अल्लाह तुम्हें असहाबल यमीन में और असहाबिकून अलवलून में देखना चाहता है। और जब इंसान की रूह निकाल ली जाती है और उसे मौत दे दी जाती है, उसी लम्हे आपकी जिंदगी के इम्तिहान का वक्त खत्म हो जाता है। टन टन टन, घंटी बज गई, हाथ से पेपर छीन लो। कभी अपना कोई पेपर याद कीजिए, जो आखिरी 5-10 मिनट होते थे उस वक्त कलम कैसे चलता था, दिमाग कैसे चलता था। और हमेशा ये कहते थे, एक्सक्यूज मी, गिव मी 5 मिनट, 2 मिनट। मुझे तो याद है कि मेरी तो अक्सर एंड पे लाइन ही लगती थी, प्लीज प्लीज आखिर में मुझसे बात में ले लेना, आपकी मेरी मोहलत खत्म होने वाली है। इस जिंदगी की मोहलत मान लीजिए, चारों तरफ दुनिया में फितने हैं, दुनिया आपका मेरा मुंह देख रही है। हम इस दुनिया में कुछ करके जाएं, अनफो नास बने, अनफो हुम। फरमाए, लोगों में सबसे अच्छा वो जो दूसरों को नफ़ा देता है। एक इनकारी शख्स, अल्लाह का नाम मानने वाला, जब दुनिया से जाता है तो उस वक़्त क्या कहता है? सूरत मोमिनून की आयत 99 और 100 में क्या आता है? हत्ता इज़ा जा अहदहुमुल मौत क़ाल रब्बि इरजिऊनी लअल्ली आमलु सालिहन फीमा तरक्तु कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा वमिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून। बिल्कुल सूरत के एंड के करीब की आयतें हैं। जब इन गुनाहगारों में से किसी की मौत आती है या किसी को मौत आने लगती है, तो वो कहता है कि मेरे परवरदिगार, मुझे थोड़ी सी मोहलत क्यों ना दी, क्यों? ताकि मैं अपनी छोड़ी हुई दुनिया में जाकर नेक अमल करूं। मगर अल्लाह ताला फरमाते हैं, हरगिज़ नहीं ऐसा हो सकता, ये तो सिर्फ एक बात है जिसको तू करने वाला है, बातें हैं तेरी। अब इसके पसे पुश तो एक हिजाब है, यानी बरज़ख, और इनके दोबारा जी उठने तक क्या पता चला कि आज अमल कीजिए, कल किसी ने नहीं देखी। आज आप और मैं अपनी ज़िंदगी के मकसद को अगर पूरा नहीं कर पा रहे, तो कल हम सब को उस तालिब इल्म की तरह जो सारा साल इधर उधर के तमाशों खेलों में लगा रहा और बाद में सब अपने साथियों को पास होकर अगली क्लास में जाता देखा, और जिसको पता चला कि तुमने अभी एक और साल इधर ही रहना है। चलिए, उसकी सपली आ गई है, एक और साल लगा लेगा। इस दुनिया में आपके मेरे लिए कोई सेकंड चांस नहीं है। तो एक बात दिल की तख्ती पे लिखिए कि हर एक की मौत का वक्त मुकर्रर है, मगर उसे मालूम नहीं। आप यहाँ आए इस लेक्चर के लिए, आपको यहाँ का वक्त मालूम था? मालूम था। जगह मालूम थी? मालूम थी। बहुत कुछ पता था, आप पहुँच गए। बिलफर्ज इस लेक्चर का वक्त और जगह सब कुछ जैसे कि मुकर्रर थी वो होती, आपको ना पता चलता, कोई आपको ना बताता, किसी भी तरह से आपको मैसेज ना मिलता, तो क्या स्टिल फिर भी आप इधर होते? नहीं होते। क्यों? क्योंकि इंसान को नहीं पता। अल्लाह सुबहाना ताला ने आपकी मेरी डेथ डेट, देखिए अमेरिका में कहते हैं DOB, डेट ऑफ बर्थ। सबसे ज्यादा जो फिगर लोग बाहर की दुनिया में सुनते बोलते लिखते हैं ना, वो उनकी डेट ऑफ बर्थ है। नॉर्वे में आपको एक पर्सनल नंबर मिलता है, जिसको हर मुल्क का होता है, सोशल सिक्योरिटी कहते हैं अमेरिका में, हर एक का डिफरेंट होता है। लेकिन आपका मेरा DOD नहीं पता। सोचिए आज क्या डेट है? अब हम जो लाइव लेक्चर कर रहे हैं तो आज नवंबर 13 है, अल्हम्दुलिल्लाह, वेनसडे का दिन है। हम सऊदी अरब के शहर दम्माम में बैठे हुए, बहुत ही प्यारी जगह, बहुत ही अच्छा इदारा, अल्लाह इसको कायम रखे, गरास इंस्टीट्यूट में बैठ के ये बात हो रही है। अब मेरी ये बात सुनने वाले तो यहाँ नहीं बैठे हुए, ये लेक्चर इंशाल्लाह अल्लाह करे क़यामत तक ही रहे, लोगों की हिदायत का जरिया बने, नूरुल कुरान यूट्यूब पे डाल दें, नूरुल कुरान TV, यू के साथ नूर के लफ्ज़ को लिख दें, माई नूरुल कुरान डाल दें फेसबुक पे या जहाँ भी डलता है। लेकिन ये जगह, ये कुर्सियाँ, ये माइक, ये सब कुछ महफूज हो गया। आप सब मेरे साथ इसके अजर में शामिल हैं जो इस वक्त इतनी मोहब्बत से सुन रहे हैं, इतनी खामोशी से सुन रहे हैं। और फिर हम इस दुनिया से चले जाएंगे। लिखिए, मैं कब जाऊंगी? अक्सर अपनी मौत को सोचा करें। आपको था कि वक्त के साथ अब हमें इतना मसरूफ कर दिया गया, हम गाड़ी में बैठे भी हैं, कोई बात नहीं जाइए, फोन से खेलना शुरू हो जाते हैं, कोई नहीं आया अभी तक एयरपोर्ट पकड़, कोई मसला नहीं, दो दो घंटे भी खड़े रहेंगे फोन हाथ में। अब ड्राइवरों को भी गुस्सा नहीं आता, माली बाबों को भी नहीं आता, हर बंदे के हाथ में एक फोन है, खेल रहे, मजा कर। अब शौहर भी नहीं गुस्सा करते अगर बेगम शॉपिंग करने चली गई और ज्यादा देर लगाई। हाँ हाँ बेगम, जाओ मेरी जरा फिल्म पूरी हो जाए, मैं और खेलूँ, मैं खबरें सुन लूँ, है ना। हर बंदा मसरूफ है। और इसका एक नुकसान जो सबसे बड़ा मैंने फील किया है अपने इस सारे टीचिंग के कैरियर के दौरान, सोच खत्म हो गई, तदब्बुर खत्म हो गया, और हर बंदा सेल्फ सेंटर्ड, अपने ही हुसन का दीवाना बना फिरता हूँ, अपनी जात, वॉन्डर ब्लाइंडली। कुरान कहता है या माहून बनी इसराइल, ऐसे दीवानों की तरह वादी थी में 40 साल घूमते रहे, वही हो रहा आज। लेकिन जिस दिन मैं इस दुनिया से जाऊंगी, मेरी जिंदगी की शाम होगी, मुझे पहले से नहीं पता होगा। चंद सवाल लिखिए, क्या मैं अपनी मौत के फरिश्ते को देखकर तौबा करूंगी? क्या मैं अपनी मौत के फरिश्ते को देखकर अल्लाह ताला की फरमा बरदार बनूंगी? आज तो मैं अपनी मर्जी करूं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरी जात मेरी मर्जी, तो क्या मौत के फरिश्ते को देखकर अल्लाह की मर्जी मानूंगी? नहीं पता। क्यों छुपाया? इसलिए कि हर वक्त तैयार हो। पहले मेहमान के आने का अंदेशा होता था, धड़का लगा होता था, आ ना जाए, कब आ रहे हैं, और अब कहते नहीं अभी उनकी लोकेशन हमारे साथ शेयर्ड है, हमें पता है अभी वो इतनी दूर है। सोच खत्म हो गई। तो याद रखिए, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। और जब मौत का वक्त आएगा ना, एक लम्हा और एक सांस की भी मोहलत नहीं मिलेगी। सूरत आल इमरान आयत 145 में अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, वमा काना लि नफ्सिन अन तमूत इल्ला बिइज़्निल्लाह किताबम मुअज्जला। कोई जी रूह अल्लाह के इज़न के बगैर मर नहीं सकता, मौत का वक्त तो लिखा हुआ है। गज़वे उहद के तनाजर में ये आयतें थी। लोग डरते हैं, हाय वहां जाएंगे तो मर जाएंगे, हाय ये करेंगे तो मरेंगे, तो हम में से तो हर एक ने मर जाना। एक शख्स था तो उसको पानी से बहुत डर लगता था, किसी मौके पे उसको कश्ती में सवार होना पड़ा। अब वो कश्ती जरा सी हिले ना तो ये डरे, हाय मैं मर गया, हाय मैं डूब गया, हाय मैं मर जाऊंगा। तो जो कश्ती चला रहा था वो तो हर वक्त ही कश्ती में होता था, दिन दिन में, कहने लगा तुम इतना क्यों डर रहे हो? कहने लगा मैं मौत से डर हूँ। अच्छा, तो ये उसको ना बहलाने लग गया, कहने लगा अच्छा इधर आओ बातें करते हैं। बातों ही बातों में जो डर रहा था ना, उसने कहा ये बताओ तुम्हारा बाप क्या करता था? कहने लगा कश्ती चलाता था। अच्छा फिर उसको मौत कैसे आई? कहता बस क्या करें, एक दिन समंदर में तूफान आ गया और कश्ती डूब गई, मेरा बाप मर गया। अब ये और डरा, कहा तुम्हारा दादा क्या करता था? वही जवाब, कहाँ मरा कहाँ कश्ती में। जब दो तीन की बात हुई, कहने लगा अब तुम्हें कश्ती चलाते हुए डर नहीं लगता? तुम्हारा बाप भी पानी में डूब के मरा, तुम्हारा दादा भी डूब के मरा, तुम्हें डर नहीं लगता? कहने लगा नहीं। अच्छा तुम बताओ तुम्हारा बाप कहाँ मरा? कहने लगा मेरा बाप तो घर के बिस्तर पे मरा। अच्छा तुम्हारे दादा को कहाँ मौत आई? कहा वो भी घर के बिस्तर पे लेटे। तो कहने लगा फिर तुम्हें अपने बिस्तर पे लेटते हुए डर नहीं लगता? कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। इसी तरह सूरत आराफ के आयत 34 में आता है, वलिकुल्लिन उम्मतिन अजलुन फ़ैज़ा जा अजलुहुम ला यस्ताख़िरून सा'अतुन वला यस्तक़दिमून। और हर गिरोह के लिए एक मुकर्रर मियाद है, जब उसकी वो मियाद मुअय्यन आ जाएगी उस वक्त वो एक घड़ी न पीछे रह सकेंगे न आगे बढ़ सकेंगे। एक सेकंड आपकी मेरी जिंदगी नहीं बढ़ेगी, आज इस जिंदगी की कदर कर लें। हमने इसको मुफ्त की खीर समझ के बांटना शुरू कर दिया, घंटों हम दूसरों को दे देते और जाया कर देते। सूरत हिजर की आयत 4 और 5 में अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, वमा हलकना मिन करियतिन इल्ला वलहा किताबुम मालूम मा तस्बिकु मिन उम्मतिन अजलहा वमा यस्ताखिरून। किसी बस्ती को हमने हलाक नहीं किया मगर ये कि उसके लिए एक मुकर्रर वक्त लिखा हुआ था, कोई गिरोह अपनी मौत से आगे नहीं बढ़ सकता और पीछे नहीं रह सकता। अब सवाल लिखिए अपने दिल में, इंसानी उम्र की औसत हद क्या है? व्हाट इज एन एवरेज एज? उम्र कितनी होनी चाहिए? आप में जिसके दादा या दादी, नाना नानी अभी जिंदा है, वो हाथ खड़े करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी अल्हम्दुलिल्लाह 10, 12 हाथ खड़े हैं। अल्लाह आपके बड़ों को सलामत रखे। मैं एक सवाल पूछूं, माइंड तो नहीं करेंगे? 70 से 80 में तो होंगे ना दादा दादी, शायद इससे भी ज्यादा हो। किसी का दिल करता है क्या वो फौत हो जाए? अब तो वो कुछ करते भी नहीं, उठाना पड़ता है, हैंडीकैप है, बेड रिडन है, इसके बावजूद बच्चों का दिल नहीं करता कि माँ बाप दुनिया से जाए। ऐसे ही है ना, शौहर, बच्चे, किसी के लिए दिल नहीं करता। तो फिर किस उम्र में जाना चाहिए? हमारा दिल क्या कहता है? नहीं जाना चाहिए। मेरी माँ तो ना जाए, मेरा बाप ना जाए, मेरे भाई वीर ना जाए, मेरी बहन ना जाए, मेरे खाला फूफा मामू चचा ना जाए, दिल तो यही कहता है। लेकिन कुल्लू नफ्सिन जायकतुल मौत, किसी शख्स को जब पता ही नहीं उम्र कितनी, जिंदगी कितनी, कभी आएगी, तो फिर अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया 60 से 70 साल की उम्र एवरेज एज है। बड़ी खूबसूरत हदीस है, हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, आमार उम्मती मा बैन सित्तीन इला सबईन अकल्लुहुम मैं यजूज़ ज़ालिक। मेरी उम्मत की उम्रें 60 से 70 साल के दरमियान है और बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो 70 से ऊपर जाएंगे। माइंड ना करें तो मैं पूछूं, आप में से कोई है 70+? वैसे आप बताएंगे नहीं, क्योंकि औरतों के बारे में एक कहावत है कि औरतें मैक्सिमम 30+। बचपन में बड़ा शौक होता है उम्र बताने का, बच्चे जो है ना वो फौरन पूछते हैं, मैं 2 की हो गई, 3, 4, 5, 6+, मैं कब बड़ी होंगी। अच्छा 10 साल तक ठीक है, फिर आके टीनेजर के ख्वाब शुरू हो जाते हैं, आई एम टीन नाउ, 13, 14, 15, स्वीट टीन, और 19 क्या है? स्वीट टीन। जब 20 के होते हैं तो फिर वो नजरें लग जाती हैं कि अब शादी, रिश्ता, वो फुला मुझे देख रही थी। इस उम्र में हर औरत जिसका खुदा न खास्ता कोई बेटा हो, उसको मिलकर यही लगता है वो मुझे देख रही थी। मैं ये नहीं कहती कि बेटा देख रहा था, अम्मा देख रही थी। अच्छा 20 से 30 में शादी हो जाए, एक दो बच्चा हो जाए, ठीक है, 30 से ऊपर औरतें नहीं बढ़ती। जैसे वो गाड़ियों की स्पीड होती है ना, इससे आगे करेंगे तो गाड़ी उलट जाएगी। औरतें 30 से ऊपर हो ना, वो कितनी है? जस्ट 30+। भाई 30+ कितना? 30+20। झूठ तो नहीं बोलती औरतें, छुपाती भी नहीं है। 30+30। सबसे ज्यादा खुशी एक औरत को कब होती है? जब कोई कहे ये आपके साथ आपकी बहन है, बेटी है, हाय सच्ची ये तो आपकी बहन लग रही है, दिल करता है अगले का मुंह चूम ले। एक माँ थी, वो माँ खुद यंग लगती थी, तो पहली बेटी, वैसे ही बता आपको जल्दी बड़ी हो जाती हैं बच्चियां, तो वो बच्ची जब उसके साथ लगती थी तो ये बड़ा चिढ़ती थी। शादी में, फंक्शन में, कहीं ना कहीं जाना तो क्या हुआ, माँ को कहती थी तुम मेरे से जरा पीछे अलग रहा करो, क्यों? जब लोगों को पता चला तुम मेरी बेटी हो तो लोग फिर मुझे बड़ा समझते हैं। तो बस आपको पता है किस उम्र पे हद उजर की है? किसी को याद है? अल्लाह के नबी की हदीस सुन लीजिए, सिलसिला तो सहीहा की ये रिवायत है, मन अमरहुल्लाह सित्तीन सनतन फकद अअज़रल्लाहु इलैहि फिल उमुरी। जिससे अल्लाह ताला ने 60 साल की उम्र दे दी, फिर उसके लिए कोई उजर नहीं छोड़ा। ये बुखारी की रिवायत है 6419, और जो पिछली रिवायत थी 60-70 वाली, ये सिलसिलातुल अहादीस से सहीहा की रिवायत 757 थी। क्या पता चला, अल्लाह अकबर, 60 साल तक उम्र मिली, कम हिसाब होना। जिस दिन 60 से ऊपर चले गए, अब इमेजिनेशन में लाइए जरा अपने आप को, ईमान बिल आखरा है, ये कोई खेल थोड़ी है। एक औरत है, क्यामत के दिन वहां लाई जा रही है, सारी जिंदगी दुनियादारी में खप खप आके चले गए, बचपन खेल कर खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। ना अल्लाह की किताब पढ़ी, ना सीखा ना कुछ, नमाज रोजा वही था जो बचपन से सीखा हुआ था। अल्लाह ताला पूछ सकते हैं उससे, ऐसी तसव्वुर में लाइए, ए औरत मेरी किताब पढ़ी थी, सीखी थी? हाँ अल्लाह, वक्त ही नहीं मिला, बस बच्चों में खो गए, ये हो गया। कितनी उम्र थी? बस यही कुछ 65 साल की होके फौत हुई हूँ। हदीस में आता है कि हुक्म होगा कि इसका हिसाब लो, इसका उजर कबूल नहीं है, यानी अपील इसकी मुस्तरद कर दो। तुझे 60 साल की उम्र में 1-2 साल ना मिले कि तू मेरी किताब पढ़े। अगर हमें दुनिया की 100 किताबें पढ़कर मेडिकल की डिग्री मिलती है और हम वो पढ़ लेते हैं लेकिन कुरान नहीं पढ़ते, सीखते नहीं, तो कल उधर नहीं चलेगा। इसलिए जिसकी उम्र 40 से ऊपर हो वो सामान पैक करना शुरू कर दे। जी, 40 से ऊपर किसी शख्स की उम्र हो और उसका दिल दुनिया में लग रहा हो, खतरा बहुत मुश्किल है। ये वो आखिरत की तैयारी के साल है। आज आप अपना जाकर घर में ना ब्रेक डाउन कीजिएगा, मैं बचपन से लेके 10 साल कहाँ थी, फिर 10 से 20 साल की उम्र कहाँ गुजारी, क्या तरजीहात थी। आप में से, मेरे में से हर एक जो इस वक्त 40+ है, वो अपने आप से पूछे, मैंने तैयारी शुरू कर दी। देखिए ना, 32 में हाफ हो जाती है उम्र, 64 लगा लेना, तो 32 साल की उम्र में आपने, यूं देखिए मेरे हाथ को, यूं करेंगे ना किसी चीज के ऊपर चढ़ना है, ये हाफ हो गया ना 32। अब आगे यूं फिसलना है आपने। गोड्डे गिट्टों में दर्द है, जिस्म में जोड़ों में दर्द है, फिर तो बीमारियां, परेशानियां, कमजोरियां। 40 के बाद तो औरत ढलना शुरू हो जाती है। अल्लाह ने जो मीनोपॉज की एज दी है वो गलत नहीं है। चले, कोई बहुत भी खिंच गया तो 50 साल तक निकल जाएगा, आगे क्या होगा। इसलिए लिखे, मौत को हमेशा याद रखना और हर दम उसके लिए तैयार रहना। अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के नबी के साथ था मैं, एक अंसारी शख्स आया और उसने अल्लाह के नबी से सलाम दुआ की। कहा, अल्लाह के रसूल, मोमिनों में से कौन सबसे ज्यादा अफजल है? आपने फरमाया, जिसका अखलाक सबसे अच्छा है। उसने पूछा कि मोमिनों में से अक्लमंद कौन है सबसे ज्यादा? आप ये जुमला याद रख सकें तो लिख लें। आपने फरमाया, अक्सरुहुम लिल मौत जिक्रन वक्सनहुम लिमा बादहु इस्तेदादन उलाइकल अक्यास। कईस लफ्ज होता है ना, जीनियस, जिसको कहते हैं जिसका IQ बहुत हाई हो, कौन है? फरमाया, जो मौत को कसरत से याद करे और मौत के आने के बाद आने वाले वक्त के लिए खूब अच्छी तैयारी करे, वो सबसे ज्यादा अक्लमंद है। ये इब्ने माजा की रिवायत है, 4259 नंबर की। तो आप लिखिए अपने नाम पे। मैं अपने आप से पूछती हूँ, क्या मैं अक्लमंद हूँ? अक्सर ख्वातीन अपने आप को बहुत अक्लमंद समझती हैं। कभी अपनी रवा रवी में बातें कर रही होती है ना, मैं तो ऐसे बनाती हूँ, मेरी तो बिरयानी बड़ी अच्छी है, उसी दिन ढीली हो जाएगी, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, उस दिन दाएं हाथ से भी नहीं होता। तो मौत को याद करना और मौत के लिए तैयार रहना, ये अक्लमंदी की अलामत है। एक और रिवायत है हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, तिर्मिज़ी में, 2307। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अक्सिरु ज़िक्र हाज़िमिल लज़्ज़ात, यानी अल मौत। लज्जतों को मिटाने वाली चीज़ यानी मौत को कसरत से याद किया करो। अल्लाह ने अगर आपको मुझे लंबी उम्र दी है तो एक जुमला लिख लें, लंबी उम्र और अच्छे अमल, ये सआदत मंदी की अलामत है। अगर अल्लाह ने आपको मुझे 40, 50, 60 का कर दिया है, 70 का भी अगर कोई इधर बैठा है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र कीजिए, बुरा नहीं बनाइए, लंबी उम्र से फ़ायदा उठाएं, नेकियां करें। अल्लाह के नबी ने फरमाया, हज़रत जाबिर से एक रिवायत है, 2330 नंबर है हदीस का, अगर आप नंबर नोट कर लें, फरमाया, अला उख़बिरुकुम बिख़ियारिकुम, क्या मैं तुम्हें बताऊं तुम में से कौन बेहतरीन यानी सआदतमंद लोग हैं? अला उख़बिरुकुम बिख़ियारिकुम ख़ियारुकुम अतवलुकुम आमारन व अहसनुकुम आमालन। क्या मैं तुम्हें बताऊं कि तुम में से बेहतरीन यानी सआदतमंद लोग कौन है? फिर आपने फरमाया, तुम में से बेहतरीन लोग वो हैं जिनकी उम्र निस्बतन लंबी हो और अमल के लिहाज से भी वो तुम में सबसे अच्छे हों। चलिए यहाँ एक जहनी एक्टिविटी करते हैं, आप भी और मैं भी। अपनी फैमिली के वो लोग जो फौत हो चुके हैं उनको सोचें। क्या आपको अपने ख़ानदान में, करीबी जानने वालों में कोई बहुत छोटी उम्र में फौत होता हुआ याद आ रहा है? मुझे याद है, हमारी एक मोमानी थी, बहुत छोटी उम्र में दुनिया से चली गई। जिंदगी को गनीमत समझें, थोड़ी हो या ज़्यादा है गनीमत। मौत से पहले जितना मुमकिन हो अच्छे अमल करें। सहाबा कराम को अल्लाह के नबी बड़ी प्यारी नसीहत करके गए, और मैं सोचती हूँ कि आज अगर आप कोई एक रिवायत भी याद ना रखें और इसको पल्ले से बांध लें जो सही बुखारी की रिवायत है 6416, तो मुझे लगता है कि आपके मेरे लिए तोशा होगा, ज़ादेरा होगा। और वो हदीस क्या है? अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن كبيش فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा कंधा पकड़ा और फरमाया, अब इस जुमले को दिल में लिखिए, अब्दुल्ला दुनिया में मुसाफिर या राह चलने वाले की तरह ज़िंदगी गुजारो। चुनाचे इसके बाद अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु खुद भी कहा करते थे कि लोगों, अगर शाम कर लो तो सुबह का इंतज़ार मत करो, और अगर सुबह कर लो तो शाम का इंतज़ार मत करो। और सेहत को बीमारी से पहले और ज़िंदगी को मौत से पहले गनीमत जानो। क्या हम इस नसीहत पे अमल करते हैं? बहुत कम, इल्ला माशाल्लाह। आप में से जो भी कभी पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश जाता होगा, क्या दिल चाहता है? डायरेक्ट फ्लाइट, बिलफर्ज रास्ते में एक स्टॉप हो, फिर क्या दिल करता है? बहुत लंबा हो, छोटा हो, हाथ में खूब सामान पकड़ा हो, या खाली? इस दुनिया में एक ट्रांजिट पैसेंजर की तरह रहिए। खाली हाथ तो मज़े ही बड़े होते हैं। कितना वैसे रश आता है उन लोगों पर जो ब्रीफ केस उठा के टुप 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 करके जा रहे हैं, और आप अपने बड़े बड़े बैग उठाकर मियाँ साहब के गुस्से और डांट के साथ सामान तुलवा रहे होते हैं, और वो जब निकलवाते हैं, बीबी और निकालो, फिर गिबतें करते हैं, ये एयरलाइन वाले बड़े सख्त हैं। हमारा दिल करता है हमें 100 किलो की इजाज़त मिले, और 100 भी थोड़ा लगता है। हल्के हाथों से रहिए। आज जाकर अपनी अलमारियाँ देखिएगा, कितने कपड़े हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। कब पहनना था आखिरी बार? एक एक जोड़े को वो हैंगर से उठा के बेचारे की मुश्किल आसान करें, हैंग किए हुए ना, हमने उनको सूली पे चढ़ाया हुआ है। ये मैंने आखिरी बार कब पहना था? कितने कपड़े हैं जिनकी अभी बारी नहीं आई? बर्तन, कुछ बर्तन तो होते ही इसलिए हैं कि बस मियाँ साहब को कहाँ इजाज़त है कि उन बर्तनों में खाना खाएं, क्योंकि वो तो हमने ससुरालों के लिए रखे हुए हैं, अपने ससुराल नहीं, बच्चों के ससुरालों के लिए, और खिलाते बाद में लोगों को कागज़ के बर्तनों में। सोचिए ज़रा, अल्लाह ताला में अपनी ज़िंदगी को गनीमत जानने वाला बनाए, गनीमत जानिए। अब एक सवाल पैदा होता है उस मौत से, कि मौत की तमन्ना की जा सकती है? नहीं की जा सकती। सिर्फ दो सूरतें जायज़ हैं, क्योंकि इस्लाम ना तो इस बात की इजाज़त देता है कि इंसान दुनिया की मुश्किलात से घबरा कर मौत की तमन्ना करने लगे, और ना ही ये पसंद करता है कि मौत से फरार की राहें सोचे और इसका मुकाबला करने से घबराता रहे। इसीलिए इस्लाम में सुसाइड हराम है। आप अपनी जान नहीं ले सकते, आप किसी और की नहीं ले सकते। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, सही बुखारी में 5673 नंबर है, ला यतमन्ना अहदुकुमुल मौत, तुम्हें से कोई मौत की तमन्ना ना करे, इम्मा मुहसिनन फला अल्लाहु अन यज़दादा खैरन, अगर वो नेक होगा तो उम्मीद है कि इसके आमाल में और इजाफा हो जाए, वइम्मा मुसीअन फलाअल्लाहु अन यस्तातिब, और अगर वो बुरा है तो मुमकिन है कि मरने से पहले तौबा कर ले। किसी के बारे में कोई नेगेटिव रिमार्क ना दें। अगर कोई बंदा बुरा काम कर रहा था कभी, आप जानती हैं, आपको एक साल बाद वो कहीं नजर आया, आप अपने साथ बैठी को कहते हैं, तुम्हें पता ये शराबी है, बिलफर्ज, और वाकई वो शराब पीता था जब आपने उसको देखा था। हदीस में आता है कि अगर वो इस वक्त जबकि आपने उसके बारे में ये बुरी बात की, शराब छोड़ चुका है, तौबा कर चुका है, तो फिर आपको मौत नहीं आएगी इससे पहले कि आप शराब पिए। हम औरतें अपनी जुबान पे काबू पाए, कनखियों से, इशारों से, चुप करो, क्या बताऊं, बाद में बताऊंगी, ये करना हो सकता है उस शख्स की सारी जिंदगी के गुनाहों से बड़ा गुनाह बन जाए। एक सवाल करते हैं बहुत सारे लोग, यहाँ तो मुझे अंदाजा नहीं है उम्रों का क्या स्केल है, वेस्ट में उम्रें बड़ी लंबी हैं, नॉर्वे की एवरेज एज 100 साल है, और कभी आप उनको देखें ना हॉस्पिटल्स में और ओल्ड होम्स में, ऐसे लगता है मुर्दे लेट रहे हैं, कोई है ही नहीं पास। ये तो मुसलमान इतने खुशकिस्मत हैं कि हमारा इतना मजबूत फैमिली सेटअप है, हमारा तो हर घर ओल्ड होम है और हमारा हर घर बच्चों का डे केयर है, क्योंकि हम अपने बड़ों की भी खिदमत करते और बच्चों की भी करते। तो क्या ये अपने बूढ़े माँ बाप के लिए सोच सकते हैं कि अल्लाह ताला इन पर रहम कर दे, इनको मार दे? नहीं कर सकते। क्या पता उन पे जो तकलीफें, आजमाइशें हैं, वो उनके आखिरत के दर्जे बुलंद कर रही हैं, उनकी जिंदगी की कोई खता को माफ कर रहे हैं? तो नहीं कर सकते। इसी तरह एक रिवायत में आता है, ला यतमन्ना यन्ना अहदकुमुल मौत वला यदु बिही मिन कब्ल यातियहु, तुम में से कोई शख्स मौत आने से पहले उसकी तमन्ना ना करे और ना ही मौत की दुआ मांगे। और ये बात सही मुस्लिम में, पिछली रिवायत बुखारी और मुस्लिम दोनों में थी। ये कब होता है? हमारे पास एक प्रोजेक्ट है जिसको दुख सुख कहते हैं, कोई अच्छा मशवरा किसी को मिलना हो देना हो तो इसके लिए बनाया हुआ। कुछ खवातीन कहती हैं कि मुझे जीना ही नहीं है, मैं दुआ कर सकती हूँ कि मैं मर जाऊँ? नहीं कर सकते। हाँ, दो सूरतों में तमन्ना है। नंबर एक, ए अल्लाह मुझे शहादत की मौत मिले, इसकी शरीयत में गुंजाइश है। अल्लाह के नबी ने एक दुआ की, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ये रिवायत है, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लज़ी नफ्सी बियदिही लवदित्तु अन्नी उक्तलु फी सबीलिल्लाह सुम्मा अहया सुम्मा उक्तलु सुम्मा अहया सुम्मा उखिया सुम्मा उक्तलु सुम्मा उखिया सुम्मा उक्तल। उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मैं ये पसंद करता हूँ कि अल्लाह के रास्ते में शहीद कर दिया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर शहीद किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर शहीद किया जाऊं और फिर जिंदा किया जाऊं। ये है अल्लाह के नबी की सिखाई हुई दुआ। ये बुखारी की रिवायत 7227 की दुआ है, तो आप भी कह सकते हैं। और आपको मैं उम्मते मुस्लिमा की माओं का मिजाज बताऊं, एक टीचर जो बच्चों के डे केयर में पढ़ाती हैं वेस्ट में रहते हुए, उनका मेरे पास ये एक मैसेज आया था कि हम बच्चों को दुआएं सिखाते हैं और उन्होंने अपने बच्चों को दुआ सिखाई। कौन सी दुआ सिखाई? नया लिबास पहनने की। और आपको पता है कि उस दुआ में क्या लफ्ज आते हैं? इल्बिस जदीदन एश हमीदन व मुत शहीदन। तराज आ गया, माओ ने आकर टीचरों से कहा, शुरू की दो चीजें सिखाओ, आखिरी लफ्ज ना बोलो। आप इस उम्र से क्या उम्मीदें रखते हैं? लफ्ज शहीद से भी डरते हैं, मौत से भी डरते हैं, हालांकि अल्लाह के नबी बार बार कह रहे हैं कि मैं इस तरह हो जाए, मेरे साथ ऐसे हो जाए, मैं ये करूं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर शहीद किया जाऊं। और दूसरी दुआ हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से आती है, बहुत प्यारी दुआ है, अगर आप मांगना चाहें तो मिलके हम पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादतन फी बलदी रसूलिक, या अल्लाह मुझे अपने रसूल के शहर में शहादत की मौत नसीब फरमा। बाज़ रिवायात में थोड़ा सा फर्क भी है, और वो क्या है? अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिका वज़अल मौत फी बलदी रसूलिका। ए अल्लाह, मैं तुझसे तेरे रास्ते में शहादत का सवाल करता हूँ और ये भी सवाल करता हूँ कि मुझे मौत तेरे रसूल के शहर में आए। ये सारी बुखारी की रिवायतें हैं, जितनी भी अभी बता रही हूँ ये ऑल आर फ्रॉम बुखारी। तो ये दुआ आप भी मांग सकते हैं, अल्लाह ताला हमें शहादत की मौत दे। दूसरी सूरत, कोई ऐसी आजमाइश आ गई जिसमें आप दीन और ईमान पर कायम नहीं रह सकते, ऐसी हालत में मौत की तमन्ना की गुंजाइश है। हजरत अनस से रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जब कोई शख्स किसी ऐसी तकलीफ में मुब्तला हो तो इस तकलीफ की वजह से मौत की तमन्ना हरगिज़ ना करे, लेकिन अगर बहुत मजबूर हो तो क्या कहे, अल्लाहुम्मा अहयिनी मा कानतिल हयातु खैरल्ली व तवफ्फनी मा कानतिल वफातु खैरल्ली, इलाही जब तक जिंदगी मेरे लिए बेहतर है मुझे जिंदा रख, और जब मौत बेहतर हो तो मुझे उठा ले। और हमारे यहाँ एक मारूफ जुमला है, मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाओगे। आज तो कहते हैं मर जाए मर जाए, लेकिन मरने के बाद की तकलीफें उसका क्या होगा। और एक चीज जिस पे बंदे मोमिन की नजरें लगी रहती हैं वो क्या है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुक लज्जत नज़री इला वज्हिक व शौक इला लिकाइक, ईमान का तकाजा है अल्लाह से मुलाकात की ख्वाहिश रखनी चाहिए। तमन्ना तो दुरुस्त नहीं, लेकिन ये ख्वाहिश कीजिए कि अल्लाह जब भी मेरी मौत आए तो मुझे आपका दीदार हो। इसमें उबादा बिन सामत से रिवायत, अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन अहब्ब लिक़ाअल्लाह अहब्बल्लाहु लिक़ाअहु व मन करिह लिक़ाअल्लाह करिहल्लाहु लिक़ाअहु, जो शख्स अल्लाह से मुलाकात को पसंद करता है अल्लाह ताला भी उससे मुलाकात को पसंद करते हैं, और जो शख्स अल्लाह ताला से मुलाकात को नापसंद करता है तो अल्लाह ताला भी उससे मुलाकात को नापसंद करते हैं। हमारे कल्चर में इसके लिए क्या जुमला है, ताली एक हाथ से नहीं बजती, लव एट बोथ साइड। आप जितना अल्लाह से प्यार करते हैं ना उतना अल्लाह ताला भी आपसे प्यार करते हैं। इसी तरह एक और रिवायत महमूद बिन लबीद से, कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि दो चीज़ों को इब्ने आदम नापसंद करता है, पहली चीज़ मौत है, हालांकि मौत मोमिन के लिए फितनों के मुकाबले में बेहतर है, और दूसरी चीज़ माल की कमी है, हालांकि माल की कमी क़यामत के रोज़ हिसाब से आसानी का सबब बनेगी। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह से मुलाकात को किसका दिल करता है, तो यकीन रखिए कि अल्लाह भी आपसे मिलना चाहता है। आपको भी अल्लाह से मोहब्बत है, अल्लाह को भी आपसे मोहब्बत है। याद रखिए कि मोमिन को जब मौत आती है ना तो उस वक़्त वो खुशी खुशी अल्लाह से मिलने के लिए रूह जिस्म से निकल जाती है। इसके बरक्स जब मुनकिर की मौत आती है उसको अल्लाह के अजाबों की वही दी जाती है और वो फिर नहीं चाहता कि मुझे मौत आए। करें क्या, मैं अपनी पूरी बात को अगर चंद जुमलों के अंदर सम अप कर दूँ ना, अल्लाह ताला से हुस्ने ज़न रखिए। हज़रत जाबिर कहते हैं कि अल्लाह के नबी की वफ़ात से 3 दिन पहले आपने फरमाया कि इंसान को इस हालत में मौत आनी चाहिए कि वो अल्लाह पर हुस्ने ज़न रखे। अपने बारे में सोचिए, मैं ऐसे ही सोचना सिखाने के लिए कहती हूँ। आपको क्या लगता है आपके साथ मरने के बाद क्या होगा, किसको यकीन है कि वो जन्नत में जाएगी और किसको ये लग रहा है कि मैं तो जन्नत में जाऊंगी नहीं। अल्लाह के नबी ने ये सवाल किया था किसी सहाबी से, बिल्कुल करीबुल मर्ग थे, हजरत अनस से ये रिवायत है। डेथ बेड पे एक शख्स था तो अल्लाह के नबी ने यही सवाल किया जो मैंने आपसे किया है, तुम क्या महसूस करते हो? तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी, मैं डरता भी हूँ और अल्लाह की ज़ात से अच्छी उम्मीद भी रखता हूँ। तो आपने फरमाया, जब दिल में खौफ और उम्मीद जमा हो जाए तो ये मोमिन है। जिसकी तुम उम्मीद रखते हो अल्लाह ताला तुम्हें वो अता करते हैं, और जिस चीज़ से तुम डरते हो अल्लाह ताला तुम्हें उससे महफूज करते हैं। तो अच्छा गुमान रखिए दूसरों के लिए भी। कोई सियासी रहनुमा फौत हो जाता है, कोई मजहबी रहनुमा, खानदान का बद से बदतर शख्स भी फौत हो जाता है, उसके बारे में अच्छा गुमान रखें। और मौत का टॉपिक और खुदकुशी की बात ना हो तो गलत है, तो लिख लीजिए कि खुदकुशी हराम है। इस्लाम सुसाइड को पसंद नहीं करता, जिंदगी की मुश्किलात खत्म हो जाएंगी वहां की नहीं खत्म होगी। सूरत निसा 29 में आता है, भला तक्तुलु अनफुसकुम, और अपने आप को कत्ल ना करो। और हदीस भी सुन लीजिए, बहुत खतरनाक है, और आपको मैं डराना नहीं चाहती। वेस्ट में जब मैं जाती हूँ ना, अभी अभी हम तकरीबन 6 मंथ मेरा हाल है अराउंड इसके हुए अमेरिका से आए हैं, सबसे ज्यादा जो मौजू लोग सुनना चाह रहे हैं और मेरे पास आके मुझे कहते हैं कि बच्चों को मैसेज दें, और वो क्या है कि खुदकुशी हराम है। मैं जब भूल गए फैक्ट्स, हर 10 में से 1 बच्चा इस वक्त खुदकुशी की कोशिश कर रहा है वेस्ट में, कहीं 9 कहीं 8 कहीं 7 में, मुस्लिम बच्चे। वी डोंट वॉन्ट टू लिव एनी मोर। तो हदीस उनको भी सुनाए, अगर अल्लाह ना करे कहीं आपके कानों में किसी की आवाज़ पड़ जाए। फरमाया कि जिस शख्स ने अपने आप को पहाड़ से गिराकर खुदकुशी की, वो जहन्नम की आग में यही सजा दिया जाएगा, खुद को ऊपर से नीचे गिराएगा और बार बार मरेगा और फिर दोबारा मौत का जायका चखेगा। जिसने जहर पिया उसके साथ भी यही है, जिसने लोहे के किसी हथियार के साथ खुदकुशी की वो भी ऐसी करेगा, हत्ता के जहन्नम में हमेशा के लिए अपने पेट में वो हथियार घोंपता रहेगा। ये रिवायत सही बुखारी और मुस्लिम दोनों में मौजूद है। और जिसने जिस चीज़ के साथ खुदकुशी की उसे क़यामत के दिन उसी चीज़ के साथ अजाब दिया जाएगा, ये मुस्लिम की रिवायत है। तो बींग अ मुस्लिम, अल्लाह का शुक्र कीजिए, ईमान है। मोमिन मौत से घबराता नहीं है, तैयारी करता, मौत के बाद की तैयारी करना। और मोमिन की रूह तो जिस्म में पता कैसे है, पिंजरे में परिंदा, उसकी तो ख्वाहिश है किसी दिन दरवाज़ा खोले और मैं चला जाऊं। या अयतुहा नफ्सुल मुतमईना इरजी इला रब्बी की राह दिया था मर दिया। एक हदीस में मोमिन के लिए मौत को तोहफा करार दिया गया। अब्दुल्ला बिन अमर से भी रिवायत है, ये मौत तो मोमिन के लिए तोहफा है, ये तरगीब और तरहीब की रिवायत है। तो क्या पता चला कि आपने मैंने अपने बारे में फिक्र करनी है कि हम कहाँ खड़े हैं। अचानक मौत रहमत है, शहीद को सिर्फ चींटी के काटने के बराबर तकलीफ होती है, और अचानक मौत मोमिन के लिए तोहफा और काफिर के लिए जहमत है। आखिर में हम बुरी मौत से बचने की दुआ सीख लेते हैं, क्योंकि हर जगह से उठते हुए कोई ना कोई अपने लिए ज्यादा राह लेकर जाना चाहिए। मैं भी पढ़ूंगी और ये हमारी दुआ भी होगी। अक्सर हमारे कल्चर में लोग लेक्चर के बाद दुआ कराते हैं, तो आइए जरा आज की दुआ तर्जुमे के साथ करते हैं। मेरे साथ आप भी मांग लीजिए। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल हरमी व तरद्दी वल हदमी वल गम्मी वल हरीकी वल गरीकी वल गरकी व आऊज़ु बिका ऐं يتخبطني الشيطان عند الموت وأن أقتل في سبيلك مدبرا وأعوذ بك أن أموت لدغا। ये नसाई की रिवायत के अल्फाज हैं। अब उर्दू में मांगते हुए ज़रूर आप अपने आप को भी जहन में रखिए। ऐ अल्लाह, मैं बुढ़ापे की मौत में मरने से तेरी पनाह में आती हूँ, बुलंदी से गिरकर मरने से तेरी पनाह मांगता हूँ, और किसी चीज़ के बोझ तले दबकर आने वाली मौत और गम से आने वाली मौत से भी तेरी पनाह मांगता हूँ। इसी तरह आग में जलकर मरने, पानी में डूबकर मरने से भी तेरी पनाह मांगता हूँ, और मरते वक्त शैतान के किसी भी हमले से पनाह मांगता हूँ, और तेरी राह में जिहाद करते वक्त पुश्त दिखाकर मरने से पनाह मांगता हूँ, और जहरीले जानवर के काटने से आने वाली मौत से भी पनाह मांगता हूँ। आप देखिए, आपने जहाज़ के गिरने से पनाह मांग ली है इसमें, क्योंकि जब मरता है बंदा जहाज़ में खुदा ना ऐसा क्रैश होता है तो गिर के जल जला भी जाता है। आपने पानी के समंदर के सफ़र में डूबने से भी पनाह मांग ली है। अल्लाह ताला आपको मुझे अपने रास्ते की मौत दे, इल्म के रास्ते में सीखने सिखाते में मौत दे, शहादत की मौत दे, और ज़िंदगी और मौत की बेहतरी वाली ज़िंदगी दे। एक और दुआ मांग लीजिए। अबू हुरैरा से ये दुआ हमारे पास पहुंची सही मुस्लिम के ज़रिए। अल्लाहुम्मा स्लिहली दीनी अल्लज़ी हुवा इस्मतु अम्री वस्लिहली दुनिया यल्लती फीहा माआशी वस्लिहली आखिरती यल्लती इलैहा माआदी वज्अलिल हयाता زيادة لي في كل خير واجعل الموت राहत ली मिन कुल्ली शर। दिल की गहराई से आमीन कहिएगा। या अल्लाह मेरे दीन की इस्लाह फरमा, जो मेरे इंजाम का मुहाफिज है। मेरी दुनिया की इस्लाह फरमा, जिसमें मेरा रिस्क है। मेरी आखरत की इस्लाह फरमा, जहाँ मुझे मरने के बाद जाना है। और मेरी ज़िंदगी को मेरे लिए नेकियों में इजाफे का बाइस बना, और मेरी मौत को हर बुराई से बचने के लिए बाइसे राहत बना। आमीन। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।